दिनभर तारीख 12 अगस्त दिन बुधवार। मैं हूं विनीत खरे। बिहार चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीटों के बंटवारों पर सहमति। दोनों पार्टियां 100-100 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस को 40 सीटें।
हम लोगों ने जो काम किया है इसके बाद कोई सफाई की जरूरत नहीं।
पार्टी को कोई नुकसान नहीं कहा जनता दल यूनाइटेड ने। भाजपा ने कहा समझौते का उस पर कोई असर नहीं। फुकुशिमा हादसे के 4 साल बाद जापान के परमाणु संयंत्र दोबारा शुरू होने लगे हैं। आखिर जापान की क्या मजबूरी है, सुनिएगा इस मुद्दे पर आज का साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान।
वहाँ के लोगों की करेज आप देखें तो वो तो कमाल की ही है। इसको एक हादसा ही लेना चाहिए।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। बिहार में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच आज समझौता हो गया। दोनों ही दल 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में 243 सीटें हैं। राज्य में साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा था। लोकसभा में ललित मोदी की मदद के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। सुषमा स्वराज का कहना था कि ललित मोदी के यात्रा दस्तावेज दिलाना मेरे विचाराधीन नहीं था। साथ ही उनका कहना था कि ललित मोदी के मामले में मेरा कोई हितों का टकराव नहीं है। सुषमा स्वराज का कहना था कि मेरे पति ललित मोदी के पासपोर्ट के मामले में वकील नहीं थे और मेरी बेटी 9वें नंबर की वकील थी। इस मामले में मेरी बेटी और पति ने ललित मोदी से एक नया पैसा नहीं लिया है। चीन के अपनी मुद्रा युआन को और कमजोर किए जाने के बाद वैश्विक बाजार में खलबली मच गई है। चीन के पीपल्स बैंक ने युआन को 1.6% की दर से व्यापार करने की अनुमति दे दी है। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार को ध्यान में रखते हुए मुद्रा नई प्रणाली के तहत काम करेगी। युआन के कमजोर होने से उसका असर यूरोपीय और एशियाई शेयर बाजार पर पड़ा है। चीन के इस कदम से अमरीका ने भी चिंता जताई है। अमरीका का कहना है कि चीन सरकार युआन के मूल्य को जानबूझकर कम रखती है ताकि उसे निर्यात में फायदा हो, लेकिन इससे विदेशी प्रतिद्वंदी कंपनियों को घाटा उठाना पड़ता है। चीन के वाणिज्य मंत्री जोंग युयांग का कहना था, मेरा मानना है कि ताजा स्थिति से व्यापार और निवेश के क्षेत्र पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि युआन का जो अवमूल्यन हुआ है उससे निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। ये थे चीन के वाणिज्य मंत्री जोंग युयांग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सरकार मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया से करीब 10 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा कर रही है। मैगी नूडल्स में लेड या सीसे की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई थी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह दावा भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता अदालत में ठोका जाएगा। कंपनी ने जून के महीने से ही मैगी नूडल्स को बाजार से हटा दिया था, लेकिन कंपनी इस बात को खारिज करती रही है कि मैगी का सेवन असुरक्षित है। दक्षिण कोरिया में एक बुजुर्ग ने खुद को आग लगा ली है। यहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा कोरिया की महिलाओं को पकड़कर उनके यौन उत्पीड़न करने के मामले में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जब करीब 80 साल के इस बुजुर्ग ने खुद को आग लगा ली। सियोल में हो रहे प्रदर्शन में ये प्रदर्शनकारी जापान से मांग कर रहे थे कि वे कोरिया के लोगों पर हुई जातियों की बात को स्वीकार करें। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिन भर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। आपने समाचारों में सुना सबसे बड़ी खबर बिहार से है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा लगता है समझौता हो गया है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के बीच में। दोनों पार्टियां 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उधर कांग्रेस के लिए 40 सीटें छोड़ी गई हैं। एक रिपोर्ट के साथ समीर आत्मज मिश्र।
बिहार में RJD, JDU और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, ये तो लगभग तय था। लेकिन सीटों पर तालमेल भी इतनी आसानी से हो जाएगा, इसे लेकर आशंका थी, लेकिन ऐसा हो गया। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 100-100 सीटें RJD और JDU के खाते में गई हैं, जबकि 40 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई हैं। सीटों का जब ऐलान हो रहा था उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और लालू यादव के अलावा कांग्रेस की ओर से बिहार के प्रभारी CP जोशी भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने साफ कर दिया कि चुनावी एजेंडे में मुख्य रूप से भाजपा या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। लालू यादव का कहना था,
हम देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कई का प्रस्तावकों को नस्ताबोध देश की जनता दरकिनार कर नरेंद्र मोदी के आप समझिए सारा हथियार उनका भोसर हो गया, ये सब हम समझ रहे हैं। तब हम इकट्ठे हो गए देश के लिए।
वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि महागठबंधन चुनाव में जीत हासिल करेगा।
हम लोगों ने जो काम किया है इसके बाद कोई सफाई की जरूरत नहीं, और आज जितने प्रकार का भ्रम पैदा करने की अब तक कोशिशें हुई, एक एक करके उन सबों के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई, और आज महागठबंधन ने मूर्त रूप ले लिया। पटना के गांधी मैदान में बिहार स्वाभिमान रैली का आयोजन होगा, चुनाव के लिए सीट शेयरिंग हो गया, और मिलकर हम लोग अगली सरकार बनाएंगे, और उसके जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में हम अपने कार्यक्रमों का भी ऐलान करेंगे।
नीतीश कुमार ने यह भी साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए संबंधी बयान भी प्रमुख चुनावी मुद्दों में होगा। इसी मुद्दे पर महागठबंधन आगामी 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली का आयोजन कर रहा है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। नीतीश कुमार का कहना था,
जिन्होंने बिहारियों का को अपमानित किया, सिर्फ मुझे को नहीं सबको अपमानित किया है, डीएनए में गड़बड़ी की बात कही है। अब बिहार भर से लोग डीएनए की जांच कराने के लिए अपना सैंपल भेज रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि जो बिहारियों का डीएनए है वही मेरा भी डीएनए।
जानकारों का कहना है कि महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों का बंटवारा भले ही हो गया हो, लेकिन पसंदीदा सीटों का मुद्दा अभी भी एक चुनौती है। जानकार इस बात पर भी आशंकित हैं कि सीट बंटवारे पर जनता दल यूनाइटेड को झुकना पड़ा है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा में 115 विधायक होने के बावजूद उसे सिर्फ 100 सीटें ही मिली हैं, जबकि आरजेडी के पास महज 22 विधायक हैं और वो भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन जिस आसानी से सीटों का बंटवारा हो गया है, जानकार उसे महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत के रूप में देख रहे हैं।
ये थे समीर आत्मज मिश्र। तीनों ही पार्टियां इस समझौते को अपने लिए अच्छा फैसला बता रहे हैं। तीनों पार्टियों का मतलब है राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। आइए सबसे पहले सुनते हैं जनता दल यूनाइटेड का इस पर क्या कहना है। हमारे सहयोगी रतन श्रीवास्तव ने जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता पवन वर्मा से संपर्क किया और पूछा कि क्या इस ताजा समझौते से उनकी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है उसका 100 सीटों पर चुनाव लड़ना क्या घाटे का सौदा नहीं?
ये जो सीटों का बंटवारा वो बहुत सोच समझकर तय हुआ है, और उसमें दोनों ही पार्टियों को 100-100 सीटें दी है और कांग्रेस को 40 सीटें दी। इसमें न किसी का नुकसान है। मैं समझता हूँ महागठबंधन का फायदा है कि सीटों पे जो हमारा विपक्ष कह रहा था कि कटुता होगी या सीटों के बंटवारों में गठबंधन ही टूट जाएगा, ऐसे सब बातों का हमने खंडित किया है। बहुत समय से ही एक सुचारू ढंग से इन तीन मामलों का समाधान।
लेकिन पवन वर्मा साहब ये बताएं कि कांग्रेस के पास पिछले विधानसभा में 5 से भी कम सीटें थीं और इस बार 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को आपके साथ आने की वजह से और आरजेडी के साथ जाने की वजह से मिल रही हैं, तो कांग्रेस तो एकदम ही विन विन सिचुएशन में है। मतलब उनका तो भविष्य काफी बेहतर ऐसा लग रहा है कि बिहार में होगा इस बार।
पार्टी की साख्त और पार्टी की जीतने की क्षमता एक इलेक्शन से नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, वो एक सम्मानित हिस्सा है इस महागठबंधन का। उनको जो दी गई है, जो वो हम समझते हैं, न्याय संगत है।
यानी वो एक जूनियर पार्टनर है आपके और आगे भी रहेंगे उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए।
इस गठबंधन में सारे गठबंधन के साथी बराबरी का दर्जा रखते हैं। कुछ लोग कम सीटें लड़ रहे हैं ज्यादा और कुछ बराबर।
क्या लगता है कि आखिरकार 100-100 सीटें आपके और आपके मेन पार्टनर लालू प्रसाद यादव के बीच हैं? नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ताल में ताल मिलाकर कितने दिन तक चल सकेंगे? फर्ज कीजिए कि आपकी जीत होती है तो।
पहले जब घोषणा की थी कि हम अलायंस बनाएंगे तो बीजेपी और विपक्ष के और लोग कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता। जब हमने अलायंस बनाया तो उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा हो ही नहीं सकता। जब हमने बंटवारा कर लिया और दोनों ही लीडर साथ मंच पर बैठ करके बोले कि अब यह ताकत हमें इस गठबंधन को कमजोर करने में सफल नहीं हो सकती, तब लोग ये कह रहे हैं कि अगर जीत जाएंगे तो ये सरकार चल नहीं सकती। ये बहुत साफ जाहिर है, बीजेपी घबराई हुई है। उसके सारे जो आरोप इस तरह के थे वो असफल हुए हैं।
ये थे पवन वर्मा, और इस समझौते पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा का कहना था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस तरह की, खासकर आप लोग तो बहुत ही संगठित मीडिया हाउस हैं, आप लोगों को ये जानना होगा कि अब ये चुनाव नीतीश कुमार, आरजेडी, लालू जी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। हर सीट पर वो व्यक्ति चुना जाएगा जिसके पास विनेबिलिटी फैक्टर हो और जो गठबंधन का जो धर्म है, जो उसके वैचारिक पहलू है, जिसके अंदर वो आत्मसात ज्यादा दिखेगा, वो व्यक्ति चुना जाएगा।
पिछली बार जदयू ने 141 सीटें जीती, भाजपा ने 102 सीटें जीती। इस बार आपका क्या अनुमान है, आरजेडी के पास कितनी सीटें आएंगी?
देखिए, मैं अपने दल का सिर्फ अनुमान करूं तो अब वो गठबंधन धर्म के प्रति एक मेरी प्रतिबद्धता जाहिर नहीं होगी। हमारा मानना है कि हम मजबूती से सरकार बना रहे हैं और भाजपा का पूरा गठबंधन अगर दहाई का आंकड़ा क्रॉस कर ले तो ये मैं समझता हूँ कि चमत्कार ही होगा।
यानी आप कह रहे हैं कि भाजपा 100 भी नहीं पहुँचेगी और आपका गठबंधन 100 प्लस पे रहेगा?
मैं जब दहाई कह रहा हूं तो मैं समझता हूं कि 40-50 से लेकर के 60 अगर आ जाए भाजपा को, तो वो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा चमत्कार होगा जो आज की तिथि में। और अगर प्रधानमंत्री जी ऐसे ही कुछ रैलियां और संबोधित करते रहे तो मैं कहता हूं कि संभवतः हमें पूर्ण प्रचार की भी आवश्यकता नहीं होगी।
लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ में आगे बढ़े, ऐसे नेता जिनका राइज हुआ, जिनका राजनीतिक उत्थान हुआ, उसके बाद बहुत मुख्यमंत्री रहे, दोनों टॉप लीडर्स बिहार के, उसके बाद ईगोस के क्लैश हुए, उन दोनों के विचारों में मतभेद हुए और पर्सनालिटी क्लैश रहा है, एक साथ कितने दिन तक चल सकेंगे?
देखिए, एक चीज तो आप स्पष्ट मानिए कि राजनीति बड़ी गत्यात्मक चीज है। क्या हम में से किसी ने कल्पना की थी कि भाजपा एक दिन एक व्यक्ति को समर्पित भाजपा हो जाएगी? जहां भाजपा से हमारा विरोध हमेशा से रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी भाजपा से रहा, लेकिन जब एक हम एक जो जिसको कहते हैं कि मेटामॉर्फोसिस देख रहे हैं पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, उसमें ये साथ आना, आप ये मत समझिए कि सिर्फ ईगो दो साथ आ रहे हैं, दो नेता आ रहे हैं, कार्डर ड्रिवन है ये अलायंस, और ये कार्डर की इच्छा थी जिसका इन दोनों नेताओं ने और तमाम और लोगों ने सम्मान किया।
ये थे मनोज झा। उधर भाजपा के नेता और केंद्र में मंत्री रामकृपाल यादव ने समझौते को सिरे से नकार दिया है।
विपक्षी दलों का सीट का समझौता हुआ है, उससे क्या अंतर पड़ने वाला है? हमारे एनडीए के स्वास्थ्य पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये लोग जो है ना, ये लोग समझौता कर रहे हैं मगर इस समझौता से कोई लाभ होने वाला? बिहार की जनता इन पर भरोसा कहाँ कर रही है भाई? की जनता को जिस तरह से इन्होंने परेशान किया है, इनकी सरकारों को देखा है, इनके मुख्यमंत्री सुकाल को देखा है, अब ये समझौता क्यों कर रहे हैं? ये तो आधार विहीन हो गए हैं, जनता ने इनको नाकार दिया है।
लेकिन यादव जी, अभी मेरी आरजेडी में उनके शीर्ष नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि भाजपा 40 से 60 भी पार नहीं कर पाएगी।
अब वो क्या कहेंगे? अभी तो चुनाव में देखा है, विधान परिषद का जो चुनाव हुआ, कहां हाथे पर चले आए। हम 13 सीट जीते हैं, 13 सीट, और ये लोग की क्या स्थिति रही है? ये अभी छोटा सा टेलर हुआ है। लोकसभा में क्या स्थिति? लोकसभा में तो दोनों लोग दावा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट ही नहीं आएगी।
तो लेकिन यादव जी, ऐसा लोग जानकार ये भी कह रहे हैं कि 2014 में जो मोदी जी के चुनाव प्रचार का प्रभाव था वो अब काफी बिहार में फीका सा पड़ रहा है, क्या सही बात है?
अभी अभी दो दो रैलियां हुई है, अद्भुत। ये जनभार हुआ है नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में, लहर चल रहा है। जिस तरह से लोकसभा में लहर चल रहा था, वो समुदाय, वो वर्ग, वो तबका जो परेशानी में रहा है, नीतीश कुमार के राज पर कभी विश्वास नहीं करेगा। 10 साल झेला नीतीश कुमार को, अब और 5 साल झेलने को तैयार नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ,
लेकिन
मिजाज है जनता।
लेकिन यादव जी जो 10 साल झेला है आपने कहा नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने, उसमें तो बहुत से वर्ष भाजपा के साथ भी झेला है ना?
हाँ, बिल्कुल नहीं सही कहा। 7 वर्षों तक हमारे साथ इनका शासन रहा, तो आपने खुद देखा होगा कि बिहार की प्रगति हुई, दुर्गति हुई, मगर उसमें भी।
लेकिन भाजपा 7 वर्ष तक क्यों इंतजार करती रही दुर्गति होने का?
देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं आपसे बताऊं कि नीतीश कुमार जी इस प्रदेश के मुखिया थे, जिस समुदाय, जिस वर्ग के बारे में मैंने कहा, उनका मन में दुराग्रह बहुत जमाने से था।
ये थे राम कृपाल यादव, उनसे बात की थी नितिन श्रीवास्तव ने, और उससे पहले मनोज झा को आपने सुना, उनसे भी नितिन श्रीवास्तव ने बात की थी। हमारे साथी पंकज प्रियदर्शी इस वक्त स्टूडियो में है, बिहार की राजनीति पर इनकी निगाह रहती है। पंकज, ये समझौता किसके लिए बेहतर है, ये कहना कि जो पार्टी सत्ता में है उसका भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ना, सौदा किसके लिए बेहतर है?
देखिए विनीत, बहुत मुश्किल है अभी ये कहना, क्योंकि नतीजे जब आएंगे तभी इसका असली पोस्टमार्टम होगा। लेकिन अगर अंक गणित के हिसाब से देखें 100, 100 और 40, तो आपको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में कांग्रेस दिख रही है मुझे, क्योंकि पिछली बार पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने लड़ा तो हर सीट पे था लेकिन सिर्फ 4 सीटें मिली थी। इस बार गठबंधन की राजनीति होने के बाद अगर वो 40 सीटों पे लड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा फायदा उनको मिल रहा है। लेकिन इसमें एक आप कह सकते हैं उलझा हुआ भी गणित है। नीतीश 100 सीट पे लड़ रहे हैं, पिछली बार 141 सीट पे लड़े थे वो जब भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो नीतीश थोड़े से बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। आपको लग सकता है कि नीतीश ने, लालू जी ने नीतीश को मात दे दिया, चौका छक्का लगा दिया, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अभी हम लोग को इंतजार करना चाहिए। हाँ, लालू यादव के लिए जरूर विन विन सिचुएशन इसलिए है कि पिछली बार सिर्फ 22 सीटें मिली थी, और अगर गठबंधन मिला के वो 100 सीटों पर लड़ रहे हैं तो शायद, अगर जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के जातीय समीकरण को मिला के ये गठबंधन दावा कर रहा है, तो फायदा दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव को मिलेगा। लेकिन नीतीश के पक्ष में एक बात ये जाती है, आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात आई थी तो कांग्रेस के पास गए थे, आपको याद होगा, तो कांग्रेस की सीटें वो जोड़ के अपना सीटें देख रहे हैं। तो इसलिए अगर नीतीश के गुट को माने, अगर उस महागठबंधन में भी एक गुट को माने, तो नीतीश के पास 140 सीटें आपको देख रही है। लालू यादव अभी भी 100 पर ही है, लेकिन अगर 100-100 में लालू यादव को अगर ज्यादा सीटें आई चुनाव बाद की स्थिति में, तो जैसा कि कई जानकार कह रहे हैं विनीत, और मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपने भी सुना होगा कि बिहार की राजनीति चुनाव पूर्व से बाद, चुनाव के बाद और ज्यादा रोचक होने वाली है।
शुक्रिया, 140 वर्सेस 100, ये थे पंकज प्रियदर्शी, बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस लगातार कई दिनों से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग कर रही थी, संसद में कामकाज भी नहीं चलने दे रही थी पार्टी। आखिरकार आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पर लंबी बहस हुई जिसमें दोनों पक्षों की ओर से तीखे आरोप लगाए गए हैं। सलमान रावी की रिपोर्ट।
ललित मोदी के सवाल पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा बुधवार को भी जारी रहा। हालांकि हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही को बृहस्पतिवार की सुबह तक के लिए स्थगित कर देना पड़ा, मगर लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से अनुरोध किया कि वो कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लाए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।
मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप खड़गे जी का वो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें और जिस भाषा में उन्होंने दिया है उसी भाषा में स्वीकार कर लें और प्रश्नकाल को स्थगित कराकर तुरंत चर्चा शुरू करवा दें। कहिए कि अपनी सीटों पर जाएं, खड़गे जी चर्चा शुरू करें, मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हूँ।
मगर विपक्ष के सदस्य प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग करने लगे। खड़गे ने कहा कि कार्य स्थगन पर प्रधानमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि एडजमेंट मोशन आप एडमिट करके सभी बिजनेस आप पोस्टपोन करके चर्चा के लिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांग्रेस के हंगामे के बीच सदन में अपनी सफाई देते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार पर ही ललित मोदी की मदद करने का ठीकरा फोड़ा।
अपील फाइल नहीं हुई आपके कारण, राइट ऑफ रेजिडेंसी उसे मिला आपके कारण, वापस वो क्यों नहीं लाया जा सका आपके कारण, क्योंकि आपने एक्सट्रैडिशन रिक्वेस्ट नहीं डाली। आप मुझसे पूछते हो कि मैंने उसकी मदद की? अध्यक्ष जी, 38 साल से राजनीति में हूँ।
वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लेते हुए ललित मोदी को भारत में काले धन का केंद्र बताया।
इज द सेंटर ऑफ काला धन इन इंडिया, ललित मोदी इज अ सिंबल ऑफ काला धन इन इंडिया। आवर प्राइम मिनिस्टर सेड कहूंगा ना खाने दूंगा, टुडे ही डज नॉट हैव द गट्स टू सिट इन दिस चेयर एंड टेक अ क्वेश्चन।
चर्चा में सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ललित मोदी का विवाद खड़ा कर कांग्रेस ने पूरे मॉनसून सत्र को धो डाला, मगर सदन में चर्चा के दौरान वो अपने आरोपों को साबित करने के लिए एक भी तथ्य नहीं रख पाई है।
पूरा पार्लियामेंट का एक सेशन वॉश आउट हो गया, क्या बहुत बड़े कारण कोई रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस रणनीति को अपनाया? लेकिन एक खेद इस बात का है कि ना खड़गे जी के भाषण में ना उनकी पार्टी से जो दूसरे सदस्य बोले वो अपने आप को केवल खोखले नारों से ऊपर नहीं उठा पाए, कोई तर्क आधार नहीं दे पाए।
बृहस्पतिवार को संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और सरकार की कोशिश रहेगी कि वो राज्यसभा में जीएसटी बिल पारित करा ले। वैसे संसद में चल रहे गतिरोध की वजह से लगभग 64 ऐसे विधेयक हैं जो लंबित रह गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक 2015 के अलावा मॉनसून सत्र में कोई और बिल पारित नहीं हो पाया है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
और अब दुनिया जहान। फुकुशिमा हादसे के 4 साल बाद जापान के परमाणु संयंत्र दोबारा शुरू होने लगे हैं। आखिर जापान की क्या मजबूरी है कि वो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहना चाहता है? दुनिया जहान में आज निखिल रंजन इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहान। तबाही क्या होती है जापान ये जानता है, लेकिन फिर भी 11 मार्च 2011 को जब एक साथ धरती डोली और गहरे सागर से सुनामी ने सिर उठाया तो उगते सूरज का देश कांप उठा। सागर से आई लहरों में जब बड़ी बड़ी इमारतें और गाड़ियां खिलौनों की तरह बहने लगी तो सबसे पहले चिंता हुई फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र की, जो उसी इलाके में था और उसे चोट पहुंचने का मतलब था जापान का उसी तबाही के दौर में पहुंच जाना जिसे वो 7 दशकों से भुलाने की कोशिश में है। परमाणु रिएक्टर को बचाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन अगले ही दिन उसका एक क्षण परमाणु ईंधन की भीषण गर्मी में पिघल गया। उसे ठंडा करने वाला तंत्र समंदर से आई तेज लहरों में थम गया था। जिनेवा की सन प्रयोगशाला में काम कर रही डॉक्टर अर्चना शर्मा,
जब वो डिजाइन किया गया था तो उसमें अर्थक्वेक के और सुनामी के इस तरह के सब प्रोविजंस किए गए थे कि अपने रैपिड रिएक्शन कैसे करेंगे, इमरजेंसी प्रोसीजर्स कैसे करेंगे। मगर जिस स्केल पर सुनामी आई वहाँ पर, 45 मीटर की वेव आ गई वहाँ पर, वो एक उनका जो रिएक्टर था उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए।
इस हादसे का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में परमाणु ऊर्जा के विरोध में आवाजें उठने लगी। जापान के सभी परमाणु बिजली घर बंद कर दिए गए और विकल्पों पर विचार किया जाने लगा। लेकिन हादसे के 4 साल बाद जापान ने एक बार फिर अपने परमाणु रिएक्टरों को चालू करना शुरू कर दिया है। मंगलवार से दक्षिणी जापान के सेंदाई में पहला परमाणु रिएक्टर काम पर लग गया। आखिर इतनी भीषण तबाही के बाद भी जापान परमाणु ऊर्जा क्यों चाहता है? टोक्यो की कियो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर मुकेश विलियम्स,
4 साल के बीच जापान गैस, नेचुरल गैस और ऑयल, इसके ऊपर निर्भर रहा। आयात जो इम्पोर्ट है उसका कर बहुत भारी हो गया। बिजनेस है उसको करीब 100 मिलियन $100 मिलियन का खर्चा पड़ा इलेक्ट्रिसिटी पे, और वो कहते हैं कि हमने साइज छोटा किया, R&D पे ज्यादा पैसा खर्चा नहीं किया और लोगों को कम किया, तनख्वाह कम की। अब ये जो सिलसिला है 2 साल 1 साल खिंच जाएगा, कितने साल खिंचेगा ये?
ऐसा नहीं कि जापान ने इस तरह के हादसों की तैयारी में कोई कमी रखी थी। इस देश के लिए भूकंप कोई अनहोनी नहीं और वहाँ की सरकार के साथ आम लोग भी इसके लिए हर पल तैयार रहते हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा,
बहुत ही छोटा कंट्री और बहुत ही हिम्मत वाला कंट्री है मुझे कहना पड़ेगा। जैसे World War II के बाद वो कहाँ पहुँच गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में, और हर तरह से जापान बहुत आगे निकल चुका है और बहुत आगे बढ़ गया है। वहाँ के लोगों की करेज आप देखें तो वो तो कमाल की ही है। इसको एक हादसा ही लेना चाहिए, एयरलाइंस में एक्सीडेंट हो जाते हैं तो सारी एयरलाइन इंडस्ट्री तो नहीं बैठ जाती।
बावजूद इसके जापान के लिए इसे झेल पाना इतना आसान नहीं था। प्रोफेसर मुकेश विलियम्स,
लोगों के पैसे कम हो गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का दाम बढ़ गया है। जो उम्रदार लोग हैं वो अपना एयर कंडीशनिंग नहीं चलाते हैं, गर्मी बहुत है, बहुत से मर गए हैं इसी में। छोटी कंपनियां हैं वो बहुत सी डूब गई हैं, बहुत सी ने रीऑर्गेनाइज।
इन तकलीफों के बाद भी जापान में परमाणु रिएक्टरों को चालू करने का विरोध हो रहा है। इलाके की 26 में से 19 स्थानीय निकायों के लोगों ने रिएक्टरों को चालू करने के लिए वोट दिया, लेकिन विरोध करने वालों के पास अपनी दलील है। सात्सुम सेंदाई में परमाणु ऊर्जा का विरोध करने वाले एक स्थानीय गुट की प्रमुख रोयोको तोरिहारा,
तो मुझे लगता है कि हमारे अधिकारी या तो इस बात की परवाह नहीं करते या फिर वो हम लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखने में असमर्थ हैं। वो कहते हैं कि हमने आपको नक्शा और सलाह दे दी है, अब ये आप पर है कि इसके साथ क्या करना है। उन लोगों ने हमें छोड़ दिया है, वो हमें कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चेर्नोबिल फुकुशिमा से कुछ नहीं सीखा।
विरोध को दरकिनार करने के पीछे जापान की अपनी मजबूरियां हैं। तकनीक की दुनिया में बहुत आगे खड़ा देश कुदरती संसाधनों के मामलों में गरीब है। यहाँ न तो पेट्रोलियम के भंडार हैं और न ही ऊर्जा का कोई और बड़ा स्रोत। भारी मात्रा में आयात के बाद परमाणु ऊर्जा का विकल्प ही उसके लिए सबसे मुफीद है, जो उसकी जेब पर भारी न पड़े। जापान के पास ये क्षमता है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरत का करीब 1/4 हिस्सा परमाणु ऊर्जा से हासिल कर सकता है। हालांकि जानकार परमाणु ऊर्जा के पीछे जापान के मोह की एक और वजह बताते हैं। प्रोफेसर मुकेश विलियम्स,
जापान के पास 40 टन हथियार बनाने के प्लूटोनियम है, तो हथियार तो बनाता नहीं है, तो इनको 18 रिएक्टर चाहिए इस एनर्जी को ब्रेक करके और इस्तेमाल करने के लिए। तो लोग कहते हैं कि ये निहित स्वार्थ है।
फुकुशिमा हादसे के बाद जर्मनी ने ये ऐलान किया कि वो अपने देश में सभी परमाणु बिजली घर 2021 तक बंद कर देगा। भारत में भी उस वक्त परमाणु ऊर्जा के विरोध में आवाजें बुलंद हुई। जानकारों का मानना है कि जिस तरह का हादसा 11 मार्च को जापान ने झेला, वो सिर्फ उसी के बस की बात थी। भारत और उसके परमाणु रिएक्टर ऐसे हादसों के लिए कितने तैयार हैं? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पूर्व सचिव KS पार्थसारथी,
भारत में देखिए रिएक्टर तो सच प्लेस में कंस्ट्रक्शन हुआ थे, वो प्लेस में अर्थक्वेक और सुनामी होने का संभावना नहीं है। वो पूरा प्लेस में अभी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड पूरा एग्जामिन किया है, उसके बाद कुछ एडिशनल सेफ्टी विचे चाहिए तो वो पूरा बनाया है, वो इंस्टॉल किया है। इंडियन रिएक्टर में पहले भी ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और सुनामी का पॉसिबिलिटी नहीं था। अभी एडिशनल सेफ्टी फीचर्स करने के बाद इवन इफ अर्थक्वेक और सुनामी है तो प्रॉब्लम नहीं होगा।
फुकुशिमा हादसे ने जापान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला। ये अकेला परमाणु संयंत्र पूरे टोक्यो की बिजली जरूरतें पूरी करता है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में चीन का दूसरे नंबर पर पहुंचने के पीछे इस हादसे की भी बड़ी भूमिका है, और ऐसे में ये स्वाभाविक लगता है कि जापान अपनी जगह पर वापस जाने के लिए बेचैन है। परमाणु रिएक्टरों का चालू होना इस बेचैनी को शायद कुछ कम कर सके। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
और कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार सुशीला सिंह से। बिहार में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच आज समझौता हो गया। दोनों ही दल 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में 243 सीटें हैं। लोकसभा में ललित मोदी की मदद के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। सुषमा स्वराज का कहना था कि ललित मोदी के यात्रा दस्तावेज दिलाना मेरे विचाराधीन ही नहीं था। चीन के अपनी मुद्रा युआन को और कमजोर किए जाने के बाद वैश्विक बाजार में खलबली मच गई है। चीन के पीपल्स बैंक ने युआन को 1.6% की दर से व्यापार करने की अनुमति दे दी है। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार को ध्यान में रखते हुए मुद्रा नई प्रणाली के तहत काम करेगी। सरकार मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया से करीब 10 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा कर रही है। मैगी नूडल्स में लेड या सीसे की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई थी, लेकिन कंपनी इस बात को खारिज करती रही है कि मैगी का सेवन असुरक्षित है। दक्षिण कोरिया में एक बुजुर्ग को खुद को आग लगा ली है। यहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा कोरिया की महिलाओं को पकड़कर उनके यौन उत्पीड़न करने के मामले में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जब 80 साल के इस बुजुर्ग ने खुद को आग लगा ली। सीरिया की सरकार की तरफ से की गई हवाई कार्रवाई में 30 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। ये हवाई हमले दमिश्क के किनारों में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में किए गए हैं। BBC समाचार।
ये थी सुशीला सिंह और स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने। मैं हूं विनीत खरे। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी ठीक 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक मुझे विनीत खरे को दीजिए अनुमति।